ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனு, ஹம் லோக் वैदिक शांति मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। शांति मंत्रों के पाठ की हमारे सनातन धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। जो उपनिषद का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए पाठ के आदि में ये शांति मंत्रों का पाठ उच्चारण अवश्य ही करना होता है। यद्यपि है ये दश, यदि दशों का उच्चारण करें तो अच्छा ही है, लेकिन ये भी है कि जो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं उस उपनिषद का जो शांति पाठ है वो अवश्य करना होता है आदि और अंत में। और आचार्य जी का भी उच्चारण और स्मरण, उनके नाम का उच्चारण और स्मरण भी हम करते हैं। तो ये शांति मंत्रों के पाठ से हमको महत्तम लाभ तभी मिलेगा कि हम उनके अर्थ को समझे। अर्थपूर्वक यदि पाठ किया जाता है तो लाभ बढ़ जाता है। अब ये दस शांति पाठ है, उनमें से प्रथम जो दो शांति पाठ है उनका हम लोगों ने विचार किया। यद्यपि विचारणीय तो उनमें बहुत है, किंतु हमारा यह आशय है कि 31 जनवरी तक ये दशों का सामान्य अर्थ हमारी समझ में आ जाए। इसलिए प्रथम जो तैत्तरीय उपनिषदोक्त ओम शम नो मित्र इत्यादि का विचार किया, और द्वितीय क्रम से जिसका पाठ किया जाता है ओम सहना भवतु इत्यादि, जो कठ का शांति पाठ है और तैत्तरीय उपनिषद में भी वो उक्त है, उनका भी हमने संक्षेप से विचार किया, जिसमें भगवान से प्रार्थना की गई विद्या की प्राप्ति के लिए, और विद्या से होने वाला जो फल है वो फल की रक्षा के लिए, विद्या की प्राप्ति हो और उनका फल भी हम भोगे। विद्या की जो प्राप्ति है वो गुरु के द्वारा होती है, आचार्य से ही जो विद्या जब पढ़ी जाती है तभी वो साधिष्ट होती है। आप यदि खुद ग्रंथ को पढ़ ले तो विद्या सफल नहीं होती है। सफल क्या, उनका तात्पर्य भी समझ में नहीं आएगा। आचार्याद एव विद्या साधिष्ट इत्यादि श्रुति वाक्य भी है। गुरुमुख से ही विद्या का अध्ययन किया जाता है। अतः गुरु के अंदर हमारी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। मनुष्य मान करके हम उससे द्वेष न करें या हमारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न न हो, क्योंकि द्वेष यदि उत्पन्न हो जाएगा तो विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए खास करके इसमें बताया गया मा विद्विषा वही। हम गुरु और शिष्य परस्पर द्वेष न करें। ये जो द्वेष है वो बहुत ही बड़ा हानिकारक है, उनका छूटना बड़ा मुश्किल है। द्वेष कब होता है, अपने से कोई श्रेष्ठ हो तो उससे क्या होता है, द्वेष होता है। तो यहां पर गुरु और शिष्य के बीच में यह क्यों कहा गया कि हम परस्पर द्वेष न करें, क्या गुरु और शिष्य के बीच में भी द्वेष संभव है? होता है। देखिए एकलव्य है, उन्होंने गुरु मूर्ति का ध्यान करते हुए उन्होंने विद्या की प्राप्ति की। तो अर्जुन के प्रति अत्यधिक अनुराग के कारण आचार्य द्रोण ने एकलव्य से दक्षिणा के रूप में अंगुष्ठ मांग लिया। ऐसा होता रहता है, आदि अनादिकाल से ये चला आ रहा है। इसलिए यदि द्वेष हो गया तो विद्या की प्राप्ति असंभव सी हो जाती है। इसलिए कहा मां विद्विषा वही, ये कहा खास करके। और त्रिविध शांति का जो उच्चारण है उसमें त्रिविध तापों की निवृत्ति के लिए वो उच्चारण किया गया, आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक। सभी तापों का इन तीन में ही अंतर्भाव है, इसलिए तीनों की शांति एक साथ में कब हो सकती है, ब्रह्म विद्योदय से। ब्रह्म विद्या का यदि उदय हो तो जैसे ही प्रकाश के आने से अंधकार का तत्क्षण नाश हो जाता है। ये नहीं कि जो पहला अंधकार पहले फिर दो धीरे 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 एक एक करके, ऐसा नहीं होता, एक साथ में अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार जब हो जाता है तो ये त्रिविध ताप की शांति हो जाती है, क्योंकि ये जो त्रिविध तापों की जो पहुंच है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि तक ही है, उससे आगे नहीं है। और हम सब ये अनुभव भी करते हैं कि जब हमारा संबंध देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय के साथ जुड़ा हुआ है तब ही हमको इन तीनों तापों का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में आप देखिए, देह इंद्रिय मन बुद्धि और विषय वो होते हुए भी उनके साथ संबंध का विच्छेद हो जाता है, तो सुषुप्ति अवस्था में किसी को भी तापों का अनुभव नहीं होता है। यदि ये जो ताप है वो आत्मा के धर्म होते, आत्मा का स्वरूप होता, तो उस समय अनुभव होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। इसलिए तापों का अनुभव ये देह के साथ जुड़ने से ही होता है, और ब्रह्म विद्या से ये देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय से अहंता और ममता की निवृत्ति हो जाती है, आत्मा के अंदर अहम बुद्धि हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हो जाता है, तो ब्रह्म में ये ताप संभव नहीं है। तो संक्षेप से हमने तैत्तिरीय उपनिषदोक्त शांति पाठ का और कठोपनिषदोक्त और तैत्तिरीय शिक्षावल्ली का जो शांति पाठ है, और ये जो सहनाभवतु ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का ही भी है, वो उसमें भी वो प्राप्त है, उनका हम लोगों ने विचार किया। अब ये जो तीसरे क्रम में शांति पाठ आता है वो भी तैत्तिरीय उपनिषद का ही है, कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत ये है, तो उसका उच्चारण हम करते हैं। यश्चंदसा मृषभः विश्वरूपः छन्दोभ्यो उद्यमृतात्संबभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। तो देखिए ये शांति पाठ में क्या बताया जा रहा है उसका विचार करें पहले हम। जैसे प्रथम शांति पाठ में शरीरस्थ प्राण और चक्षुरिंद्रियादि जो करण है उनके जो अधिष्ठाता देवता है उनसे प्रार्थना की गई, और वायु से प्रार्थना की गई ताकि हमारा शरीर इंद्रिया मन यदि स्वस्थ रहे तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। और सहना भवतु इत्यादि शांति पाठ में परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि हमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो और उनका जो फल है उस फल को हम भोगे और आचार्य और गुरु के बीच में या हम लोगों के बीच में परस्पर द्वेष न हो, ऐसा उसमें बताया गया। और ये जो तृतीय जो वैदिक शांति पाठ है उसमें प्रणव जप बताए जा रहे, प्रणव की स्तुति बताई जा रही है, क्योंकि जो मेधा रहित है, मेधा रहित होने से मेधा यानी कि बुद्धि, जो व्यक्ति बुद्धि से रहित है तो उनको जो श्रुतार्थ ग्रंथ है उनका विस्मरण हो जाता है। तो विस्मरण यदि हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या का जो उदय है वो असंभव सा हो जाएगा। इसलिए मेधा सिद्धि अवश्य चाहिए। इसलिए मेधा की सिद्धि के लिए प्रणव जप करने के लिए यहां पर मंत्र बताए जा रहे हैं। इसलिए खास करके इसमें मेधा सिद्धि के लिए प्रार्थना है। मेधा रहित का अभिप्राय ये नहीं कि जो बुद्धिहीन के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रार्थना करने वाला है वो साधन चतुष्टय संपन्न है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो है नहीं। जो विवेक वैराग्य शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व इन चार साधनों से जो युक्त है वही वेदांत के श्रवण का अधिकारी है। और वो श्रवण करने जब चल रहा है तभी ये पाठ का उच्चारण किया जाता है, तब उनको मेधा सिद्धि चाहिए, अर्थात कि श्रुतार्थ जो ग्रंथ है उसका स्मरण भी रहना चाहिए। हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, किसी को भी पूछो, एक घंटा कथा सुनते तो पूछो कि याद कितना रहा, तो कहते हैं सब भूल गए। क्यों भूल गए? उसमें कई एक कारण है। ये नहीं कि हमको याद नहीं रहता, याद रहता। देखे फोन नंबर कोई भूलता? खुद का नाम कभी कोई भूलता है? कई लोग कहते हैं कि याद नहीं रहता है स्वामी जी, क्या करे, हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते भी है किंतु याद नहीं रहता है। लेकिन उनको यदि पूछो या उनके सामने 100 रुपया आ जाए तो वो देख करके 100 बताएंगे कि 500 बताएंगे? वो तो और किसी को देना है 500 रुपया पे करना है तो 500 की पांच नोट दे देंगे या 100-100 की देंगे? उसमें कभी भूलते नहीं? भूलते अपना नाम कभी नहीं भूलते, क्योंकि उसमें रुचि है। जिसमें हमारी रुचि बढ़े तो वो बात है वो तुरंत याद रह जाती है। कई बार ऐसा होता है जो याद रहता है ना, या याद रह गया है, उसको भूलना होगा तब भी हम भूल नहीं पाते। और चाहे कि हम उस चीज को भूले तो वो बार बार सामने आ जाती है, उनको आप नहीं भूलते। और यहां पर जब हम ये कथा सुनते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते हैं, तो जैसे ही शांति पाठ हो और उसके बाद में पूछो कि क्या सुना, तो कहेंगे कुछ पता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि प्रज्ञा की मंदता है। प्रज्ञा की मंदता के कारण हमारी प्रवृत्ति इस स्वाध्याय में नहीं हो पाती है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति वेदांत स्वाध्याय में हो, इसलिए यहां पर ये प्रार्थना की जाती है, ओमकार से प्रार्थना की जाती है, प्रज्ञा की मंदता को दूर करने के लिए। तो आप कहेंगे ये तो बढ़िया है, फिर प्रज्ञा की सिद्धि के लिए जप करे और व्यवहार में बढ़िया लाभ प्राप्त करे। तो यहां जो है व्यवहार सिद्धि के लिए मेधा सिद्धि नहीं मांगी जा रही है, ये जो श्रुत ग्रंथ है उनका अर्थ का जो विस्मरण हो जाता है वो व्यक्ति के लिए यहां पर ये प्रार्थना है। व्यवहारिक सिद्धि के लिए नहीं है, इसलिए जो मेधा यानी कि बुद्धि से रहित यानी कि जिसकी प्रज्ञा मंद है उनको ग्रंथार्थ विस्मरण हो जाता है, और विस्मरण हो जाएगा तो जब कहा हुआ जो है वाक्य ही याद नहीं रहेगा तो वाक्यार्थ कैसे याद रहेगा। इसलिए वाक्यार्थ याद नहीं रहेगा तो ब्रह्म विद्या का उदय नहीं होगा, और ब्रह्म विद्या का उदय नहीं होगा तो जन्म और मृत्यु से निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए पहले चाहिए कि हमारी जो प्रज्ञा है वो तीव्र बने। इसलिए प्रणव जप मंत्रों को इसमें बताया जा रहा है। देखिए इसमें सबसे पहला वाक्य है, यश्छंदसा मृषभ विश्वरूपः। प्रणव ओमकार से प्रार्थना है। ये देखो जिससे प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना में क्या होता है, उनकी स्तुति, किसकी स्तुति करते हैं तो उनके अंदर जो गुण है उन गुणों को ही तो हम उद्घाटित करते। किसी भी देवता की हम स्तुति करते हैं तो देवता के अंदर जो गुण है, जो वैशिष्ट्य है, उनका हम स्मरण करते हैं। तो यहां पर ओमकार से प्रार्थना की जा रही है। तो ओमकार कैसा है, ओमकार का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। देखिए जो ओमकार है वो इतना प्रसिद्ध है कि इसमें नाम नहीं लिया, यह करके स्मरण कर लिया। यह यानी कि जो, छंदसाम ऋषभ विश्वरूपः, जो प्रथम वाक्य है इसमें अब देखिए, यह छंदसाम ऋषभ विश्वरूपः, फिर आगे पंक्ति में चलिए, स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। यह यानी कि जो, छंदसाम यानी कि वेद में जो ऋषभ है और विश्वरूप है, स माने वही जो ओमकार है वो मैं यानी मेरे को, मेधया स्पृणोतु, मेधा से संपन्न करे। एक एक मंत्र है, तो ये पहले का स्वरूप ये है। ओमकार का इसमें स्वरूप भी बता दिया कि जो ऋषभ है और विश्व रूप है। ओमकार ऋषभ है यानी कि श्रेष्ठ है। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वो श्रेष्ठ कौन है तो कहा प्रणव। यह से अभिप्राय है प्रणव। अच्छा किसमें श्रेष्ठ है वो?